ओम शांति। हर रोज बाबा हमें बहुत बहुत सुंदर शिक्षाएं देते हैं, प्यार संपन्न शिक्षा जिससे मन ही बहुत कुछ प्राप्त करता और बुद्धि में भी बिल्कुल ऐसे बाबा स्पष्ट बताते हैं जो बुद्धि में वो बात फिट हो सके, ताकि फिर जो हमारे आदि संस्कार है वो फिर से जागृत हो सके। क्योंकि जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे बनते हैं उनको ये तो मालूम ही है कि हम सो देवता थे, और अब फिर से हम सो ब्राह्मण बन करके फिर हमें हम सो देवता बनना है, तो वो संस्कार अपने अंदर है ही। यदि हम कुछ नया पुरुषार्थ करने के लिए सोचते हैं तो भारी लगता, परंतु यदि हम ये सोचते हैं कि जो मेरे अंदर समाया हुआ है अब समय अनुसार बाबा की मदद के आधार पर फिर से उनको जागृत करके उन्हीं दैवी संस्कार, दिव्यता के संस्कार हमें फिर से जीवन में वो अनुभव करने हैं और जीवन में वो प्रैक्टिकल स्वरूप उसका बनना है, तो फिर बहुत सहज मार्ग लगता। बाबा सदा कहते हैं कि राजयोग का मार्ग सहज राजयोग का मार्ग है। तो सहज क्यों बाबा कहते? क्योंकि नई बात नहीं है। एक तो हर 5000 वर्ष कलप कलप हमने ये अनुभव किया है, पुरुषार्थ किया है, तो ड्रामा में विजय की नोंद है ही, तब हम आज मधुबन बैठे हैं। परंतु साथ ही साथ में कहेंगे, क्योंकि ये हम जानते हैं कि वो बिल्कुल हमारे अंदर की ही बात है, कोई नई बात हम नहीं सीख रहे हैं, परंतु अपने अंदर की ही जो बात है वो फिर से हम इमर्ज कर रहे हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि करीब 3-4 सप्ताह पहले बाबा की एक अव्यक्त मुरली इस प्रकार से थी, जिसमें बाबा ने कहा था कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। ये 1980s में जब हम पांडव भवन में ही रहते थे, वहां पर पत्तों पर भी लकड़े के पत्ते थे, हरियाली पेंट की हुई, तो उन पर ये 3 मंत्र लिखे हुए होते थे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। और साथ साथ शिव बाबा याद है, वो भी पत्र पर लिखा होता था। तो मुझे लगता है कि यदि हम इस बात को ध्यान पर रखें तो उसी इस मंत्र से ही हमें बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती और जीवन का परिवर्तन हो सकता। आप इस बात पर विचार करो कि जब हम कम बोलने का लक्ष्य रखते हैं तो अपना कारोबार को तो चलाना ही है, तो बाबा ने ऐसे नहीं कहा कि बिल्कुल चुप रहो, परंतु कम बोलो। परंतु कम बोलने का कनेक्शन है ही अपनी आंतरिक स्थिति के साथ, क्योंकि मन में जो बातें चलती है मुख पर बाद में आती है, ऐसे नहीं है कि मन में नहीं है, अचानक ही मुख से निकल गया। कभी कभी हम ऐसे कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था परंतु मुख से निकल गया, परंतु हमने बेशक कॉन्शियस रीति से न सोचा था, परंतु अंदर मन के अंदर कुछ ऐसे गहराई में छाप लगी हुई थी जिस कारण से वो मुख से निकला, नहीं तो कैसे मुख से निकलेगा, जबकि यहाँ कुछ भरा हुआ है और न सिर्फ दिमाग में परंतु मन में, तो ही फिर मुख से निकलता है, ये तो रियलिटी है। तो कम बोलने का आधार है कम सोचना, और उसमें भी आजकल दादी गुलजार का ही इस ग्रुप के सामने बहुत सारी कहानियां, अनुभव, फिल्म्स आदि रखे गए हैं, गीत। तो आप लोगों ने ये बात तो सुनी होंगी कि बाबा और उनके साथी जो दादियां साथ रहते थे, दादी गुलजार के लिए एक बहुत सुंदर टाइटल देते थे, निर्संकल्प देवता, सुना है ये कभी? दादी गुलजार का ये विशेष टाइटल रहता था। तो आप सोचियो कि इस एक गुण के कारण ही बाबा ने ओडो को अपना रथ बनाया, क्योंकि जबकि उसका मन बहुत शांत था, इसी कारण से बाबा की प्रवेशता होकर के उन द्वारा बाबा हमें बहुत बहुत कुछ खजाना दे सकते थे। जिसका मन उथल पाथल कर रहा है, बाबा उनमें प्रवेश करके क्या काम कर सकते हैं? उसका मन ही बीच बीच में उथल खाएगा, और जो वो मुख से बात निकलेंगे वो बाप दादा की वाणी नहीं हो सकती थी, उसका खुद भी कुछ इंटरफेरेंस हो सकता था। तो जो दादी निरसंकल्प देवता का टाइटल सभी ने दिया उन्हें, उसका मतलब ऐसे नहीं कि दादी का कुछ सोच नहीं चलता था, दादी का सोच सार रूप में चलता था। और जिनों का भाग्य था दादी गुलजार जी से मुलाकात करते, उनको मालूम है कि ये तीनों ही बातें उससे बिल्कुल लगती थी। कम बोलना, धीरे बोलना और मीठा बोलना, राइट? ये तीनों ही बातें प्रैक्टिकल दादी के जीवन में हम सबने देखी। हम सबका भाग्य था जिन्होंने दादी को पर्सनल मुलाकात की। कौन है जिन्होंने दादी के साथ पर्सनल मुलाकात की? अच्छा, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ज्यादा होंगे, तो वो भी एक ऐतिहासिक बात हो गई, ड्रामा कहेंगे। परंतु जो दादी कम सोचती थी, उसका भाव ये था, दादी कुछ व्यर्थ नहीं सोचती थी। जो बात आवश्यक है, जो बात होने वाली है, जो बात सत्य है, वही दादी सोचती थी। तो जब मन पर इतना कंट्रोल था, तो जरूर फिर वो जुबान पर भी इतना ही कंट्रोल रहा। तो जो व्यक्ति मन को छुट्टी दे देता, why, what, how, when, ये सब क्यों, क्या, कैसे, ये सब बातें जो आ जाती है, तो मुख से भी वही बातें निकलेंगी, तो छोटी सी कहानी भी बहुत विस्तार की हो जाती। बात होंगी बहुत छोटी परंतु बहुत बड़ा विस्तार हो गया। कैसे? अपने संकल्पों द्वारा। तो बाबा ने एक बार पूछा था कि आप लोगों को ये तो आदत है छोटी बात को बड़ा करना, राइट? कईयों को ये आदत होंगी, खुद को देख करके आप सोचो कि क्या मेरे में ये आदत है। तो बाबा ने कहा कि कम सोचा छोटी बात को ज्यादा सोचा तो बहुत बड़ी बात हो गई। तब उसका रिवर्स प्रोसेस भी देखो, कोई बहुत बड़ी बात हो उसको भी आप छोटा कैसे कर सके? छोटे को बड़ा किया अपने संकल्पों के साथ। तो जब संकल्प शक्ति से छोटी बात को बड़ा कर लेते हैं, तो क्या आप अपने संकल्प शक्ति से बड़ी बात को भी छोटा नहीं बना सकते? तो कहने का मतलब कि कम बोलने का आधार ही है कम सोचना, जिसमें जो आवश्यक बात है वो ही सोचे, जो काम होने वाली बात है वो ही सोचे, जो कल बाबा ने हमें मंत्र पक्का कराया, व्यर्थ को समाप्त और समर्थ को ही आगे बढ़ाते चलो, और न सिर्फ खुद समर्थ बनो परंतु अन्य आत्माओं को भी ऐसे ही बनाओ। तो जिस समय बोलने की बात आती है, उस समय अपने आप से तीन प्रश्न पूछने होते हैं। पहले प्रश्न ये पूछे, क्या ये बात सत्य है? और यदि हम किसी सुनी हुई बात का हम वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें हमें पक्का नहीं है कि ये बात सत्य है या नहीं है, तो वो कहना ही फिजूल है। तो पहले बात तो ये हम सोचे कि क्या ये बात सच्ची है। दूसरा, अच्छा यदि सच्ची भी है तो भी हम बात ये सोचे कि क्या ये काम की बात है। इसके काम की बात न हो, उसके सामने वो बात बेशक सच्ची हो, वो बात रिपीट करने में फायदा क्या। और तीसरी बात, क्या इस बात से जिसको हम सुना रहे हैं, क्या उस आत्मा की उन्नति होंगी। हम कभी कभी सोचते कि हाँ ये तो बहुत काम की बात है ना, परंतु यदि हम ये तीसरा प्रश्न अपने आप से पूछें कि क्या इससे उस आत्मा की उन्नति होंगी, तो आप खुद ही सोच लो कि जो हम बातें इतनी ढेर सारी करते हैं उसको कितना हम शॉर्ट करके बिल्कुल सार तक पहुंच सकते हैं, जिसमें हमारा श्वास, समय और शक्ति भी बच जाए, क्योंकि बोलने में कितनी शक्ति होती है, और यदि हम उसको बचाते रहें, उस एनर्जी को, तो उस एनर्जी को बचाया मीन्स वो हमारे और आगे काम में आ सकती, और यदि हम उसको बचाने की योजना नहीं बनाते हैं तो फिर वो भी शक्ति हमारी खिसकती जाती है। तो ये फर्स्ट बात कि बिल्कुल हम उस बात को समझ करके फिर हम कम बोलें, उसमें आप सोचो कितनी दिव्यता होंगी। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता उसके लिए कई बार सोचेंगे कि अभी तो इसको अवॉइड करें, अभी तो इसके साथ मिले नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी भी एनर्जी जाएंगी, उसकी भी एनर्जी जाएंगी, और उसमें कोई हम दिव्यता नहीं कहेंगे। परंतु जो आत्मा कम बोलती, समझते हैं कि उनके एक एक शब्द की वैल्यू होंगी और वो वैल्यूबल चीज मुझे काम की आएंगी, तो हम चाहते हैं कि ऐसे आत्मा के साथ हम कनेक्शन में आए, उसके साथ हम कुछ समय भी बिताएं, क्योंकि वो हमारा समय भी वैल्यूबल होगा, काम की बात होंगी, तो उसमें दिव्यता अवश्य ही भरती जाएंगी। मुझे मामा याद आती, मामा का सूरत मूरत ही ऐसे था जो बिल्कुल हरेक को दिव्यता ही नजर आती थी, साधारणता तो बिल्कुल नहीं। परंतु कई लोग कहते थे कि आप लोग जो ये कहते हो कि इस ज्ञान से, इस राजयोग से नर से नारायण बन सकते हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हैं, हम कैसे माने? परंतु जब मम्मा को देखते थे, कैसे माने ये प्रश्न नहीं आता था। बिल्कुल मम्मा का स्वरूप ही ऐसे था जो आज बेशक सफेद वस्त्रधारी है, परंतु वो लक्ष्मी का ही स्वरूप नजर आता था। दादी प्रकाश मणि को देखते थे तो बेशक रूप साधारण परंतु उसके गुणों द्वारा भी शब्द ही ये आता था जो एक विदेश का जर्नलिस्ट आया था, बिल्कुल ज्ञान नहीं था उसके अंदर, परंतु उसने फिर दादी प्रकाश मणि को देख करके फिर वापस लंदन में पहुंच करके उसने बिल्कुल अपने आर्टिकल में लिखा रीगल, रॉयल से भी एक और ऊंचा शब्द रीगल, जैसे कि कोई एम्प्रो होता है, एम्प्रेस होती है, बस देखने से ही उसको ये इम्प्रेशन बैठा कि दादी का तो बिल्कुल रीगल स्वरूप है। तो आप सोचो कि जब ऐसी आत्माएं बाबा के कार्य में सामने है हमारे, कईयों ने तो दादी गुलजार को भी नहीं देखा तो दादी प्रकाश मणि या मम्मा की तो बहुत पीछे के इतिहास की बात हो गई, परंतु आप समझ सकती हैं। और आजकल तो वीडियोस द्वारा, टेप्स द्वारा कितनी बातें सब तरफ पहुंच जाती है। मुझे याद आता है किसने मुझे कहा कि मैं चाहती थी कि मम्मा को मैं ज्यादा जानूं, तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे जान सकती हूँ, तो फिर उसने खोज की और अपनी खोज से उसको कुछ मम्मा के बुक्स की पता चला, मम्मा के वाणी की बहुत सारी बातें मिली। तो कुछ सप्ताह के बाद उसने कहा कि अभी मुझे लगता है कि मैं मम्मा को अच्छी तरह से जानती हूँ और हाँ, मैं मम्मा को उस कदम में फॉलो कर सकती हूँ। तो आज का टेक्नोलॉजी का साधन ऐसे है जो बेशक हम फिजिकल हिसाब से इन दादियों से ना भी मिले हो, जो मिले हैं उनका तो सौभाग्य, परंतु जो ना मिले हैं वो भी ये नहीं कह सकते हैं हम उनको जानते नहीं। जैसे शिव बाबा को इन आंखों से नहीं देख सकते हैं परंतु बुद्धि से तो जान सकते हैं, इसी तरह से जिन्होंने इतने यज्ञ की स्थापना के कार्य में मदद की है, सेवाएं की है, जो इतना फाउंडेशन मजबूत आज तक चल रहा है और वृद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं, उनकी भी आप बिल्कुल थोड़ा सा खोज करेंगे तो आपको बहुत कुछ उसकी जानकारी मिलेंगी और आप उनको अपने आंखों के सामने देखेंगे जैसे फरिश्ते घूम रहे हैं और आपको उनके द्वारा वो प्राप्ति हो सकेंगी। तो मैं इस कारण से आपको वो एग्जांपल्स दे रही हूँ जो बेशक अभी आंखों के सामने नहीं है परंतु वो फरिश्ते रूप में तो अवश्य ही हम सबके सामने है। तो कम बोलना और फिर धीरे बोलना। आपने सोचा होगा कभी जो भी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या कोई भी रॉयल फैमिली का होता है, कलयुग के अंत में भी वो ऊंचे आवाज से नहीं बोलते, वो अपने बहुत शांति के आवाज से बात करते। कई आपसे मिले भी होंगे, कईयों की आपने टेलीविजन पर देखा भी होगा। तो दादियों का भी कभी किसको बड़े आवाज से पुकारे आप यहाँ आओ, नहीं, इशारे से। उनों का कम बोलना, धीरे बोलना तो ऐसे था जो बहुत कुछ इशारों से ही चलता था। और दादियों को वो भी पसंद होता था कि उनों के आजू बाजू में सेवा करने वाले हैं वो भी दादियों के इशारों को समझ करके वो बात करे। नहीं तो ये भी सोच सकते हैं कि परंतु दादी ने मुझे कहा थोड़े, दादी कहेंगी, कोई भी दादी, दादी कहेंगी क्या आपने मेरे इशारे को नहीं समझा, कहने की बात तो थी ही नहीं, आप मुझे जानते हो, आप इशारों से समझ सकते थे। तो वो बहन फिर जरूर ऐसे कहेगी, जी दादी हाँ सॉरी। तो कम बोलने की एक आदत होती है जो डालनी होती है। कई कहते हैं मेरा आवाज ही बहुत बड़ा है, परंतु बड़े आवाज को भी नॉर्मल रूप से बात करना या बड़े आवाज को बहुत ऊंचे रूप से बात करना वो भी अपने हाथ की ही बात होती। तो धीरे बोलना ये भी बहुत ही आवश्यक बात है। और ऐसे अपना माइंड क्लियर हो जो हम थोड़े शब्दों में धीरे बोलने से भी अपने भाव को स्पष्ट किसके सामने करें। आप सोचो कि मिसअंडरस्टैंडिंग कब होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग तब होती जबकि बोलने वाले का भी स्पष्ट भाव नहीं है, उसके मन में भी कुछ दुविधा चल रही है, और जो सुनने वाला है वो तो फिर क्या लेगा, वो भी मिक्स्ड मैसेज लेगा, मे बी दिस, पूरा उन्हों के सामने भी स्पष्ट नहीं होगा। तो ये दो बातें पहले, फिर मीठा बोलना। ऊपर ऊपर से मीठा बोलने का भाव नहीं निकलता, और वो भी लोग आजकल तो समझ ही जाते हैं कि ये तो ऊपर ऊपर से ही ऐसे बात कर रही है, उनों के मन का भाव कुछ अलग है और शब्द कुछ अलग है, हर एक को वो फीलिंग आती है। परंतु जब हम ये मंत्र याद करते कि मीठा बोलना है, उसका मतलब ये है कि आत्मा ने अपने अंदर की इतनी सफाई की हुई हो, जो बाबा कहते थे कि पवित्रता की स्टेज वो हो जो व्यर्थ कुछ भी न आए, न संकल्प में न स्वप्न में, अब पवित्रता का कुछ अंश मात्र न हो। आप सोचो, पांच विकारों का कनेक्शन ही है अपने को मीठा बनाना। जब पांच विकारों पर हमने जीत प्राप्त की है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसका मतलब ये सब बातें हमने अच्छी तरह से आत्मा को बिल्कुल उनसे मुक्त करके आत्मा को स्वच्छ बनाया है, इतना पवित्र बनाया है जो बिल्कुल कोई प्रकार का कचरा अंदर न हो, तो ही फिर सचमुच मीठा ऐसे बोलेंगे जो हरेक शब्द जैसे कि वरदान होगा, एक एक शब्द अमूल्य होगा, जिससे अनेक आत्माओं का कुछ प्राप्ति होंगी, कुछ फायदा होगा। तो मैं जब आज की टॉपिक पर थोड़ा सा विचार कर रही थी तो मुझे लगा कि ये मंत्र बाबा ने बहुत अच्छा बताया है, जिससे सचमुच ही आत्मा की बिल्कुल अच्छी तरह से स्वच्छता हो जाए। और जब आप सोचो कि कोई भी दिव्यता की बात है, वो यदि आज हमारे मन के अंदर कोई भी विकारों की छाया है थोड़ा सा भी, तो उसके अंदर वो दिव्यता का अनुभव नहीं होगा, खुद को भी नहीं होगा, अन्य आत्माओं को भी उनों के द्वारा वो अनुभव नहीं प्राप्त हो सकता। जो खुशबू कह रहे थे पहले भी, वो जो खुशबू हो पवित्रता की, वो खुशबू ही दिव्यता की निशानी है। बाबा के सामने आते थे साकार बाबा के, तो ऐसी ही फीलिंग आती थी जैसे कि खुशबू आ रही है। बाबा कोई परफ्यूम नहीं यूज करता था, बाबा के सामने कोई और गुलाब के फूल भी नहीं नजर आते थे, परंतु बाबा के अंदर की ऐसे उनों की पवित्रता की स्थिति थी जो बिल्कुल वो दिव्यता का अनुभव होता था, वो खुशबू आती थी। जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी नाइट, और क्रियाकर्म सारा हुआ 21 जनवरी को, तो उस बीच में कितने दिन पड़ गए, कितने घंटे पड़ गए, और हम देखते थे कि क्रिमेशन से पहले भी बाबा का जो चेहरा था बिल्कुल वो चेहरा एक फूल के समान नजर आ रहा था। आप लोगों ने कईयों को देखा होगा, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो जो लाश है उसका कुछ घंटों के बाद ही, जल्दी ही कोई ना कोई उसका चेंजेस आती जाती है, रंग चेंज हो जाता है। जो मेडिकल लोग हैं उन्हों को तो ज्यादा इस बात का अनुभव है, परंतु बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। एक ये भी कारण है जो हम भारत में जल्दी क्रियाकर्म कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फिर जो चेहरा होगा वो इतना सुंदर नहीं होगा जैसे पहले था। परंतु विदेश में तो इतना जल्दी ना भी होता है तो वो भी लोगों को चेहरा दिखाते नहीं है, वो कॉफिन को बंद ही रखते हैं। परंतु बाबा के अंदर इतनी पवित्रता की शक्ति जो तन को भी बिल्कुल पवित्र बना लिया था, जो दिव्यता बाबा की थी, आत्मा की थी, उसने तन को भी इतना पावन बना लिया जो उसमें भी बात में भी कुछ और प्रकार का फर्क नहीं पड़ा। बाबा का चेहरा वो ही एक गुलाब के समान नजर आता था। तो दिव्यता संपन्न जीवन न केवल आत्मा परंतु शरीर भी अंग अंग शीतल, अंग अंग पावन। दिव्यता हमारे मस्तक से नजर आए, दिव्यता हमारे नैनों से नजर आए, दिव्यता हमारी मनसा वाचा कर्मना से नजर आए, तो हम कहेंगे कि ब्राह्मण सो देवता। उसमें भी आप सोचो कि एक और बात, आजकल कई बार न सिर्फ एक बार परंतु बाबा के मूल्यों में, चाहे ब्लेसिंग में, अव्यक्त मूल्यों में भी और ब्लेसिंग में भी, मैंने नोट किया है एक गुण है जो कई बार बाबा मेंशन करते हैं। हाँ, पवित्रता को बाबा बहुत मेंशन करते हैं, वो तो जीवन का आधार जैसे बाबा ने बताया, परंतु संतुष्टता का गुण। क्यों? क्योंकि आत्मा जब असंतुष्ट है तो उसमें उसकी भाषा कुछ बदल जाती, उसका व्यवहार कुछ बदल जाता, उसका जो कार्य चलता है वो भी उसमें कुछ फर्क आ जाता। तो संतुष्टता कैसे आए? क्योंकि समय ऐसा है कि जो हम चाहते हैं हमारे को सुविधाएं मिले, हो सकता है कि हमें ना भी मिले। हम एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा रखते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और फिर वो नहीं हो पाता तो हम फिर थोड़ा बहुत अपनी जो वो खुशी की स्थिति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। परंतु यदि आत्मा ये सोचे कि मुझे मिला कितना है, ये हम सोचते हैं कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसका तो बिल्कुल उसका अंत नहीं आ सकता। आप खूब सारी लंबी लिस्ट बना सकते हो, परंतु तो उसका ऑपोजिट आप सोचो कि अभी भी मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो उससे आपका मन का विचार, आपकी वृत्ति ही बदल जाएंगी और आप फिर बाबा को शुक्रिया कहने लगेंगे। जब असंतुष्ट मन है आप बाबा को ये कह सकते हैं, बाबा तेरा शुक्रिया। आपके मन में लिस्ट आएगी, बाबा मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और बाबा कहते हैं कदम कदम पर, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, आप करते रहो। तो सचमुच शुक्रिया कहने से मन बहुत शीतल हो जाता है, मन बहुत शांत हो जाता है और आपका योग बहुत अच्छा लगेगा। आप बाबा के सामने कंप्लेंट्स की लिस्ट रखो तो आपको क्या फीलिंग आएगी? बाबा मुझे खुशी दे रहा, बाबा मुझे प्यार दे रहा, वो तो संभव ही नहीं, क्योंकि हमारा मन कुछ अलग ही रास्ते पर चल रहा। ये आप सोचो, बाबा आपने मुझे कितना सब कुछ दिया है, तो वो सोचने से फिर आपके मन में अवश्य ही नेचुरल रूप से आएगा बाबा तेरा शुक्रिया। तो शुक्रिया शुक्रिया कहते रहो, कदम कदम पर शुक्रिया कहते रहो, तो और बाबा आपको आगे बहुत अच्छी तरह से उड़ा के लेके जाएगा। तो ये एक बहुत सहज तरीका है अपने आप को संतुष्ट करने का। और जिस घड़ी आत्मा संतुष्ट है तो आपके मन से न सिर्फ बाबा शुक्रिया आएगा परंतु आप ये भी कहेंगे कि वाह मेरा भाग्य, वाह ड्रामा, वाह बाबा। तो जो स्थिति हम बनाने चाहते हैं, ये बहुत सिंपल युक्तियां है जिससे हम बना सकते, और युक्तियां शब्द में लगता है कि कुछ हेर फेर भी हो सकती, परंतु बाबा जिस भाव से कहते हैं युक्ति, उसका मतलब है राइट मेथड, हर प्रकार से करेक्ट विधि। क्योंकि कोई भी बात सामने आती है, जैसे विदेश में ये बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं, आपके सामने पानी का ग्लास है और उसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो एक प्रकार से आप ये सोच सकते हैं कि ये तो आधा खाली है, और दूसरे प्रकार से आप ये सोच सकते हैं कि आधा तो भरा हुआ है, तो आपकी वृत्ति पर आधार है। उस वृत्ति अनुसार आपकी दृष्टि ऐसे होगी, ये तो देखो आधा तो खाली है, या ये सोचेंगे ये तो आधा तो भरा हुआ है, आधा भरा हुआ बीज से तो मेरी प्यास बुझ सकती है। तो जो हमारी मन की वृत्ति है उसमें किस प्रकार से आता है, हमारे बुद्धि के अंदर स्मृति, अपनी स्मृति से ही वृत्ति बनती, और अपनी वृत्ति से ही फिर वो दृष्टि होती, और आपकी दृष्टि में कुछ नाराजगी है, नाराजगी आ गई, देखो उसका ये कमरा अच्छा है, मेरा ये कमरा अच्छा नहीं है, तो मधुबन की खुशी आपको कहां से मिलेगी? आपकी शुरू से ही वृत्ति ऐसे हो गई तो क्या प्राप्ति होगी? परंतु मधुबन में आने का मौका मिला, मधुबन मुझे कम से कम बेड मिला, मधुबन में मुझे इतना स्वच्छता का ब्रह्मा भोजन मिला, अच्छा चलो एक घंटा मुझे क्यू में रहना भी पड़ा, कोई हर्जा नहीं, एक घंटा भी मधुबन में बिताया, वो भी बाबा की याद में हम बिता सकते, फालतू संकल्प चला करके, फिर क्या होगा, हमारी दिव्यता जो मेरे अंदर कुछ भरी हुई भी होंगी कमती होती जाएंगी, जितने फालतू संकल्प उतनी दिव्यता कम, और जिसके समर्थ संकल्प, जिसकी दृष्टि वृत्ति इतनी शुद्ध, उसमें दिव्यता हमारी बढ़ती जा रही है। मुझे याद आता कि जब विदेशियों का सीजन था एक बारी, तो एक बहन, दो बहन इकट्ठी बैठी थी, तो दोनों ने आकर के मुझे दूसरे दिन ये बात बताई, तो एक बहन ने उसको बाजू वाली को कहा कि देखो हमारे सामने कितने लोग बैठे हैं, हम तो कितना पीछे बैठे हैं। तो दूसरी वाली बहन ने उसको कहा तुम पीछे मुड़कर देखो आपके पीछे कितने लोग बैठे हैं। तो रियलिटी में जब उसने पीछे मुड़ के देखा हजारे लोग बैठे थे, हजारों के अंदाज से, तो फिर उसका दिमाग थोड़ा ठीक हुआ। तो कहती है फिर तो मुझे, मैंने बहुत एंजॉय किया बाबा की मुरली, क्योंकि वो मेरा फालतू संकल्प चला गया। यदि वो मेरा फालतू संकल्प चलता था बाबा के सामने, तो मेरे से कुछ प्राप्ति नहीं होती थी। बाबा उन दिनों में हाजिर होते थे, आते थे। तो कहने का मतलब कि हमारी स्मृति किस तरह से चल रही है, हमारी स्मृति में है कि हम सो देवता बनने वाले हैं, हमारी स्मृति में है कि हम वो आदि सनातन देवता धर्म वाली आत्मा है, हम अभी बाबा के मुख वंशावली या संकल्प वंशावली, बाबा ने ये बहुत अच्छी बात कही, वैसे तो जो संकल्प वंशावली है वो भी आज क्या सुन रहे हैं, बाबा के मुख द्वारा जो उच्चारण किए हुए महावाक्य वो ही हम सुन रहे हैं। तो हम तो कहेंगे कि चाहे बाबा की दृष्टि से जन्म लिया, मैं कहेंगी कि मैंने बाबा की दृष्टि से जन्म लिया, परंतु मुख वंशावली, दृष्टि वंशावली या संकल्प वंशावली, सब हम कितने भाग्यवान हैं जो हम ब्राह्मण बने हैं इस जन्म में। थोड़ा सा संगम युग और कोटों में कोई, उसमें भी कोई में भी कोई बाबा के बच्चे बनते हैं। तो यदि हम ये सोचते हैं कि हम कितने भाग्यवान हैं, तो हमारी दिव्यता बढ़ती जाती है, और हम अन्य आत्माओं को भी वो खुश नमा चेहरे से वो खुशी की अंदर की खुराक को अपने पास मजबूत रख करके औरों को भी हम खुशी दिलाने वाले हम ऐसे बन सकते हैं जिससे दिव्यता अंदर आए। तीसरी बात मैं ये कहेंगे कि देवता का मतलब ही है देने वाला। तो आप सोचो कि बाबा से आपको क्या क्या प्राप्ति हो चुकी है। यदि प्राप्ति न होती तो आप यात्रा करके यहां तक नहीं पहुंचते। प्राप्ति न होती तो आप हर रोज मुरली सुने क्लास में नहीं जाते। तो जरूर प्राप्ति है तभी तो ये सब कुछ आप कर रहे हो, नहीं तो हर एक के पास तो बिजी होने की लिस्ट तो बहुत बढ़िया है, ये भी करना है ये भी करना है ये भी करना है, परंतु उस बीच में करते हुए भी आप बाबा की मुरली पढ़ते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं प्राप्ति के कारण। तो उसमें यदि हम ये सोचते हैं कि हमें प्राप्ति हुई है और प्राप्ति के आधार पर अभी हमें क्या करना है, अन्य आत्माओं को देना है। देवता का मतलब देने वाला, तो दिव्यता का मतलब जो आत्मा बाबा से लेती जाती है और बाबा से जो कुछ मिलता है उससे अपने को भरपूर करती, उसमें कोई प्रकार की लीकेज न हो। नहीं तो बाबा से मिल रहा है और लीकेज होती रहे तो आत्मा अपने को भरपूर महसूस नहीं कर सकती, परंतु लीकेज हमारी न हो और बाबा हर रोज जो दे रहा है हम उसको अपने में समाते रहें, अपने को भरपूर करते रहें और साथ साथ हम देते रहें। अन्य आत्माओं को मुझे देना है जो आपकी जिम्मेवारियां हैं। मैं समझ सकती हूँ कि हर एक के ऊपर कभी चिल्ड्रन कभी ग्रैंड चिल्ड्रन, अब कभी कारोबार कभी लौकिक काम, अनेक प्रकार की जिम्मेवारियां होती ही है। या सेंटर पर रहने वाले भी कहेंगे हमको चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन तो नहीं है परंतु जिम्मेवारियां तो बहुत सारी है, परंतु उस जिम्मेवारी के बीच में ये यदि हम याद रखें कि बाबा ने जो मुझे इतना दिया है यदि मैंने उसमें से कुछ यदि औरों को दिया तो ये तो हमारा ही भाग्य है, क्योंकि जो बाबा ने दिया वो हम औरों को देते हैं वो मल्टीप्लाई होकर के वापस मेरे पास आता है। ये तो आप लोगों को अनुभव है, बाबा ने खुशी दी और दूसरे को आपने खुशी दी तो आपकी खुशी अवश्य ही बढ़ेगी, ऐसे नहीं कि वो कम हो जाएगी। बाबा का प्यार मिला, आपने किसी को दिया, शांति से किसकी बात बैठ करके सुनी, जैसे कि उसको प्यार मिला कोई ठिकाना मिला, तो वो आपकी खुशी आपका बाबा का प्यार बढ़ता जाएगा। परंतु आप ये सोचो कि मुझे देना है देना है देना है, उसमें थकना नहीं है क्योंकि वापस मेरे पास ही वो आएगा, तो फिर उसे क्या होगा, आपकी दिव्यता बढ़ती जाएंगी। मैं ये सोच रही थी कि क्या क्या बातें हमारे प्रैक्टिकल जीवन में हो जिससे हमारी दिव्यता बनती जाए। तो एक तो जो पहले मंत्र बताया बोलने के संबंध से, और दूसरा फिर अपने को संतुष्ट रखने की बात, और तीसरा हम कोई भी बात का अन्य आत्माओं के द्वारा एक्सपेक्टेशन न रखें। नहीं तो चाहे घर पे है चाहे ब्राह्मण परिवार में है, सब तरफ मन के अंदर कुछ न कुछ वो एक्सपेक्टेशन बनी रहती है कि इनसे कुछ मुझे प्राप्ति हो, इनसे कुछ मुझे मिले। और ये तो मैंने देखा है कि जैसे इच्छाएं की बात होती है, ये इच्छा है ये इच्छा है ये इच्छा है, इच्छाएं का लिस्ट तो कभी पूरा नहीं होता। इसी तरह से एक्सपेक्टेशन का भी लिस्ट कभी पूरा नहीं होगा। इतना मिला तो भी कहेंगे नॉट इनफ, इतना मिला तो भी कहेंगे उससे भी अधिक चाहिए। तो जो एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट है तो वो हम बिल्कुल न रखें। हम ये सोचे कि जबकि दाता सागर हमें सब कुछ दे रहा, मुझे भी मनुष्य से लेकर के क्या चाहिए, मनुष्य तो मुझे कुछ देंगे तो उसका हिसाब किताब बनेगा, मैंने मनुष्य से लिया मुझे मनुष्य को कुछ देना पड़ेगा। परंतु बाबा से लिया तो बाबा को हम क्या दे सकते, बस हम अपने दिल का प्यार दे सकते, अपने दिल से थैंक्स दे सकते, बाबा और कुछ चाहता ही नहीं। वो भी हम बाबा का प्यार बाबा को देते हैं तो बाबा कहेगा हाँ इसका बुद्धि योग ठीक रहेगा। वो भी कोई बाबा की प्राप्ति नहीं होती, हम प्यार देवे ना देवे बाबा तो है ही प्यार का सागर। परंतु हम बाबा को अपना दिल का प्यार देते तो बाबा हमारे प्रति निश्चिंत रहेगा कि हाँ इस आत्मा का बुद्धि योग ठीक लगा हुआ है तो इस आत्मा का भविष्य सदगति जरूर ही होगी। बुद्धि योग यहाँ वहां चले गया एक्सपेक्टेशन के कारण तो बाबा आपको गति सदगति कैसे दे सकते। तो ये हम बिल्कुल देखे कि क्या मैं देवता हूँ, देने वाला हूँ, और जितना जितना आप देते जाओ आपकी दिव्यता का बिल्कुल डिग्री बढ़ती ही जाएंगी। और फिर लास्ट बात मैं यही कहेंगी कि दिव्यता के लिए एक बहुत ही आवश्यक गुण है, सब गुणों की लिस्ट तो आ जाती है दिव्यता के अंदर, और जैसे पवित्रता का वर्णन किया, संतुष्टता का वर्णन किया, इसी तरह से एक और बात जो मैं देखती हूँ कि आजकल कुछ कम नजर आती है संसार में। बहुत वर्ष पहले मैंने दादी जानकी के साथ तो कई बार टूर करने का भाग्य मिला, परंतु हम दो विदेशी भाइयों के साथ थे और दादी और हम थी, कार की जर्नी थी, 3-4 जगह यूके में हम ट्रैवलिंग कर रहे थे, प्रोग्राम्स भिन्न भिन्न स्थानों पर रखे हुए थे उस एरिया में। तो सवेरे के क्लास में उस समय कोई ब्राह्मण नहीं थे उस एरिया के, तो जो दो भाई थे वही हमारे साथ थे। तो उन्होंने दादी से पूछा कि दादी जो हम लोगों को आप एक बात सुनाने चाहो जिससे हमारी बहुत प्राप्ति हो, फायदा हो, वो किस प्रकार से आप कहेंगे, हमें किस बात पर ध्यान हो। तो दादी को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, एक सेकंड साइलेंस करके दादी ने उन लोगों को कहा, मैं देखती हूँ कि मेरे जमाने में बचपन से लेकर, और दादी का जन्म हुआ था 1916 में, तो आप सोचो कि वो जमाना बिल्कुल कुछ और ही था, न सिर्फ विदेश के हिसाब से परंतु भारत के हिसाब से भी। तो उस समय बचपन से ही हम लोगों को रिस्पेक्ट देना, हरेक के साथ रिस्पेक्ट से बात करना, वो हमारे बिल्कुल अंदर रगों में डाला जाता था। बच्चा डिसरिस्पेक्ट से बात करे वो तो कभी देखा ही नहीं, परंतु दो भाई भी आपस में डिसरिस्पेक्ट से बात करे वो भी नहीं होता था। स्टूडेंट टीचर के साथ किस प्रकार से बात करे बिल्कुल उसको भी रिस्पेक्ट से बातचीत करना सिखाया जाता। तो आजकल के संसार में ये था अराउंड 1984-85 की बात, तो बताया कि आजकल के संसार में रिस्पेक्ट का इतना महत्व नहीं रखा जाता। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग इस बात पर थोड़ा ध्यान रखें तो आपके अंदर और गुणों की भी धारणा सहज हो सकेगी। और फिर उन्होंने कहा कि यदि रिस्पेक्ट वो नेचुरल संस्कार अभी नहीं हमारे अंदर है, हम किस तरह से वो रिस्पेक्ट को धारण कर सकते। तो दादी ने कहा जितना आप खुद आत्म स्मृति में रहेंगे और ये याद रखेंगे कि हम किसकी संतान है, तो उस हिसाब से फिर आपके एक अंदर ऑटोमेटिकली स्वमान की स्थिति बनी रहेंगी। और जिस आत्मा को अपना खुद का स्वमान है वो हरेक के साथ वो सम्मान का व्यवहार करता। और आज के जमाने में क्यों नहीं बच्चों को या बड़ों को भी एक दो के लिए सम्मान है, क्योंकि खुद के लिए उन्होंने अपना पहचान करके अपनी सम्मान की स्थिति को बना के नहीं रखा है। तो न सिर्फ विश्व का वातावरण और न सिर्फ पेरेंट्स बच्चों को इतनी शिक्षा उस प्यार से नहीं देते, परंतु आत्मा अपने आप को भूली हुई होने कारण उसको अपने आप की पहचान नहीं है, इस कारण से आत्मा को स्वमान नहीं है। और जिस आत्मा को स्वमान है वो सहज सहज हर बात को पार कर सकती, कोई भी मुश्किलात आती अपने स्वमान की स्थिति से उसको पार कर सकती, उसके कोई कंप्लेंट्स नहीं होते ये हुआ ये हुआ ये हुआ, परंतु अपने स्वमान की स्थिति में रह करके आगे बढ़ती है। या ये भी नहीं सोचती कि इस आत्मा को कुछ मान तो मुझे नजर नहीं आता है, मैं किस हिसाब से उसको मान दूं, नहीं वो भी बात नहीं है। मुझे देवता बनना है तो देवताएं आपस में किस तरह से व्यवहार करते होंगे वो थोड़ा पिक्चर आप इमर्ज करो अपने मन में। आप जब उस स्वमान की स्थिति में स्थित होंगे तो आपका नेचुरल सबके साथ उस दिव्यता के हिसाब से आप सबका व्यवहार चलेगा, रिस्पेक्ट से चलेगा, आप प्यार से बात करेंगे, आप संतुष्ट मन होकर के औरों के साथ व्यवहार में आएंगे। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, और कोई भी बात को उठाओ उसे तो बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती, परंतु सब बातों को जीवन में ध्यान रख करके उतारो तो फिर तो देवता स्वरूप तुरंत ही नजर आएंगे। ओम शांति।
एक बाबा से ही प्रीत है, मेरे मन का वही गीत है। एक बाबा से ही प्रीत है, मेरे मन का वही गीत है। वही साथी है, वही खुशी। एक बार